محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو، آپس میں ایمان کے مذاکرے کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر مجلس کے اندر میں ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں کو کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور آدمی کا ایمان جتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے اتنا اس کو اللہ کے اوامر پر اپنی زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا اس کے لیے اللہ کے عوامل مشکل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اب اس کے سامنے آپ نے بھونا گوشت رکھ دیا، تندوری رکھ دی، بریانی رکھ دی، مزے لے کر کھائے گا، اس لیے کہ وہ صحت مند ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر بیمار ہے، اس بیمار آدمی کے سامنے آپ نے بڑھیا بڑھیا کھانا رکھ دیا اور کہیں کہ تم کھاؤ، یہ بہت اچھی غذا ہے، تو وہ کہے گا کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ بہت اچھی غذا ہے، لیکن میرے اندر میں استعداد نہیں ہے اس کو کھانے کی، میں کھاؤں گا تو پریشان ہوں گا۔ تو بہن ہی بھائی اس بزرگو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی کا ایمان کبھی ایک لیول پر نہیں رہتا، یا تو آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، یا آدمی ایمان کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو ایمان گھٹتا رہتا ہے۔ جیسے بال ہے یا ایک پتھر ہے، پتھر کو آپ اوپر میں پھینکیں گے تو جب تک اس کے اندر میں وہ پرواز کی اوپر چلنے کی طاقت ہے تب تک وہ اوپر جائے گا، لیکن جیسے وہ طاقت ختم ہو جائے گی، جس پرواز سے وہ اوپر گیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ نیچے گرے گا۔ تو اس لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ایمان والو، آپس میں ایمان کے مذاکرے کیا کرو، اس لیے کہ ایمان کے مذاکرے ایمان والوں کو نفع دیں۔ دوست بزرگو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں مسافر بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ہم نے سفر کیا، ماں کی رحم میں پہنچے، وہاں 9-10 مہینے رہے، اس کے بعد یہ دنیا کے پیٹ کے اندر میں ہم آ گئے۔ اب اس دنیا کے پیٹ میں 50-60-70-80 سال کی، بہت زیادہ 100 سال کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی ایوریج زندگی 60 یا 70 سال کی ہے نا۔ اب اس سفر کے بعد قبر کا سفر ہوگا، قبر کا سفر کتنا لمبا اس کا کسی کو نہیں پتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ آدمی جو لیٹے ہوئے ہیں کتنی لمبی چوڑی زندگی ہوگی، تو وہ ایک سفر ہے۔ اس کے بعد میدان محشر کا سفر، جس دن ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اللہ پاک کے سامنے، اور فرمایا کہ وہاں کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے equivalent ہوگا۔ One day of آخرت will be equivalent to 50,000 years of this world۔ اس کے بعد ہمارا سفر ہے پل صراط کا۔ پل صراط فرمایا کہ وہ ایسا برج ہے، فرمایا کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور جہنم نیچے بچھائی ہوگی، اور 500 سال کا چران کا راستہ، 500 سال کا سیدان، اور 500 سال کا اتران، یہ ایک سفر ہے۔ اور اس کے بعد آدمی اللہ رب العزت جو ہے اس کے نیک اعمال ہوں گے تو اس کو جنت میں پہنچائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر اللہ ناراض ہوں گے تو جہنم میں آدمی جائے گا۔ تو یہ سارے سفر ہیں، اور ان سارے سفروں میں سب سے اہم سفر یہ دنیا کا ہے، 50-70 سال کی زندگی، کہ اس سفر کے اندر میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مبارک زندگی لے کر آئے تھے اس مبارک زندگی کو اپنا لیں. فرمائیں کہ اللہ کے اوامر کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے ساتھ جو بھی آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں اس کو حیات طیبہ نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی، پیور لائف. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ بڑی کوٹھی ہو، زیادہ بینک بیلنس ہو یا بڑی بڑی موٹر کار ہو، یہ شرط نہیں ہے. اللہ کے اوامر کے ساتھ ایک آدمی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، لیکن اس ایک وقت کے کھانے میں اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے. اور پھر فرمائیں کہ قبر کی، حشر کی، پل صراط کی اور جنت میں جانے کی، یہ سارے سفر جو ہیں اللہ پاک اس سفر کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے سارے آسان کر دیں گے، سارے آسان. اللہ ہمارے خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ پاک نے کیسی اپنی قدرت کو ہمیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا، سبحان تیری قدرت. دنیا کے اندر میں کوئی کارخانہ دار اگر کوئی چیز بنانا چاہے بڑھیا سے بڑھیا، تو سب سے پہلے وہ سب سے اچھا مٹیریل استعمال کرے گا، دوسرے نمبر پر وہ وسیع بڑی جگہ اس کے لیے بنائے گا، تیسرے نمبر پر وہاں پر بہت زیادہ اجالے کا وہ اہتمام کرے گا تاکہ صحیح معنوں میں کام کر سکے بڑھیا سے بڑھیا چیز بنانے کے لیے. اور فرمائیں کہ اس کائنات کے اندر میں سب سے بڑھیا اور سب سے اونچا اللہ پاک نے بنایا تو انسان کو بنایا، لیکن کیسے اپنی قدرت کو استعمال کیا کہ دو گندے قطرے، مٹیریل کے اعتبار سے دو گندے قطرے کہ اگر کسی کے کپڑے پر پڑ جائے تو وہ گھن کرنے لگے اور جلدی سے صفائی کی فکر کرے، اس کو استعمال کیا. اور تنگ جگہ پر اس کو بنایا کہ تین تین جو ہے چھوٹی سی ماں کی رحم، چھوٹی سی جگہ، اور اس تنگ جگہ کو اللہ نے استعمال کیا، اور تین تین اندھیریوں میں بنایا، تین تین اندھیریوں کے اندر میں اس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا. اور آنکھوں کو اندھیرے کی وجہ سے رونگ جگہ پر فٹ نہیں کیا، صحیح جگہ پر فٹ کیا. ناک کو صحیح جگہ پر فٹ کیا، کانوں کو صحیح جگہ پر فٹ کیا. آنکھوں کے اندر میں روشنی کی قوت اللہ پاک نے اسی اندھیرے کے اندر میں اپنی قدرت سے بنایا. ایک آدمی اگر ماں کی رحم سے بغیر آنکھ کا آ جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو آنکھ نہیں دے سکتے. بغیر ہاتھ کا آ جائے تو نقلی ہاتھ تو دے سکتا ہے، لیکن جو فنکشن کرے کوئی نہیں دے سکتا. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر میں رہنے کا ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں پہنچایا. اس طریقے میں ہمارے 100% کامیاب. اس کے علاوہ آدمی اپنی عقل سے کوئی طریقہ اختیار کرے گا، خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا، نہ صرف دنیا میں پریشان ہوگا بلکہ آخرت کے اندر میں بیچارہ پریشان ہوگا. ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ہمارے دوسرے ساتھی سفر کر رہے تھے امریکہ، تو وہاں پر ہمارے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یار زہر کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے، اور گاڑی کا گیس پیٹرول وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس کو بھی پورا لینا چاہیے، فل اپ کر لینا چاہیے. تو چلو کسی گیس اسٹیشن پر، پیٹرول اسٹیشن پر ہم چلے جاتے ہیں، وہاں پیٹرول بھی لگوا لیں گے، اس بھائی سے اجازت لے کے وہاں نماز بھی پڑھ لیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے، کچھ کھانا پینا بھی ہو جائے گا. تو ایک پیٹرول اسٹیشن کے اوپر میں ہم ٹھہرے، وہاں پر اجازت لی، ساتھیوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو ایک امریکی ہمارے پاس جماعت کے ساتھیوں کے پاس پہنچا، کہہ رہا ہے تم کیا کر رہے تھے ابھی، پوچھ رہا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی کو مقرر کیا، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ایک خدا کی عبادت ہے، ہم خدا کی عبادت کر رہے تھے، خدا کی عبادت کر رہے تھے. میں اونچی آواز سے بول سکتا ہوں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، है ना। तो वो कहने लगा कि मेरे पास दुनियावी एतबार से सब कुछ है, आई हैव अ मोटर कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक इन माई हाउस, मेरे बीवी भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस मेरा वन ऑफ द टॉप है। कहने लगा कि मैंने तुमको इस अमल को करते हुए देखा, इस अमल से मेरे दिल में ऐसा सुकून महसूस हुआ जो मैंने इन सारी मटेरियल होने के बावजूद, हासिल करने के बावजूद कभी भी ऐसा सुकून मुझे हासिल नहीं हुआ। तो मेरे जी में आया कि जबकि मैं आपको देख रहा हूं और मुझे इतना मजा आ रहा है, तो अगर उसको मैं अपनी जिंदगी में लूंगा तो मुझे कितना मजा आएगा। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी ने उसी वक्त जो है ना कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। तो कहने का मतलब यह है भाई दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहाँ पर एक मुसाफिर बनाकर इम्तिहान के तौर पर भेजा है कि आया हम मटेरियल में लगकर अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजार रहे हैं या इसमें लगकर अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर राजी करने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं तो चैन और सुकून हम भी हासिल करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दूसरे इंसानों की हिदायत का जरिया बनाएंगे। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हर मुसलमान को तीन जिम्मेदारियां दी है। ये अल्लाह का बंदा है, इसलिए अल्लाह की बंदगी कैसे करना वो सीखेगा और फिर उस सीखने के मुताबिक वो अल्लाह की बंदगी करेगा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर हम सब का ईमान है कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया गया है ना, सारी कायनात बनी है हमारे नबी के सदके में। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो गलती की थी जन्नत में, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इस दरख्त के पास मत जाना और शैतान ने मां हव्वा के जरिए उनको वरगलाया और उनको धोखे में डालकर आदम अलैहिस्सलाम ने गलती कर ली। उस गलती की सजा की बिना पर अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम को उस अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदगी थी कि फरमाया कि 40 साल तक अपनी आंख उठाकर आसमान की तरफ कभी देखा नहीं और अपनी उस गलती पर इतना रोए हैं कि इनका रोना एक तरफ कर दिया जाए और कयामत तक आने वाले इंसानों का रोना एक तरफ कर दिया जाए। तो रोने में आंसू आदम अलैहिस्सलाम के सारे इंसानों से भी बढ़ जाएंगे, इतना रोए। अब आदमी इतना सारा रोए तो फिर तो तौबा कबूल हो, है ना। 40 साल तक ये हाल है। 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम यूं दुआ फरमा रहे हैं कि बारी ताला तू मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ कर दे। सबसे पहले इंसान इस दुनिया में आए वो आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि सबसे पहला इंसान तो तू आया है, ये मोहम्मद का नाम तो कहां से लाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बारी ताला जब आपने मेरे जिस्म को बनाया और मेरे जिस्म में जब रूह को डाला तो सबसे पहले मैंने आपके अर्श के ऊपर में लिखा हुआ पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस वक्त से मैं पहचान गया था कि आपने आपके नाम के साथ जिसका नाम रखा है ये जरूर कोई आपका महबूब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम को यूं फरमा रहे हैं कि आदम लिसन केयरफुली, वो मेरा हबीब है और अगर मुझे मेरे हबीब को पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं तुझे पैदा करता, न मैं इस कायनात को पैदा करता। इसी के सदके में ये कायनात को पैदा कर दिया गया और इसी के सदके के अंदर में तुझे भी पैदा किया। तो फरमाया कि हम उस नबी के उम्मती हैं जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आपके नबुवत पर हमारा ईमान है कि आपके बाद किसी को नबुवत नहीं मिलेगी। तो पहला काम है अल्लाह की बंदगी कैसे करना, उसको सीखना। दूसरा काम है अल्लाह की उस सीखे हुए तरीके पर अल्लाह की बंदगी करना। और तीसरे नंबर पर हमारे जिम्मे क्या है कि चूंकि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और नबी जो आता था वो इसलिए आता था कि इंसानों की रहबरी करे, मुसलमानों की नहीं, इंसानों की रहबरी करे। मुसलमान तो है ही दाखिल, लेकिन इंसानियत के लिए आते थे। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबुवत के सदके में ईच एंड एवरी मुस्लिम ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल। एक एक इंसान इस मुसलमान इस सरजमीन पर इस बात का जिम्मेदार है कि अब दूसरे इंसानों तक भी अल्लाह के अवामिर और नबी के तरीके पहुंचे, इसकी मेहनत और कोशिश करें। टू लर्न दीन, टू प्रैक्टिस दीन एंड टू एस्टैब्लिश द दीन ऑफ अल्लाह सुबहानहू तआला ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मुस्लिम। जिम्मेदारी है हमारी। और अगर आदमी, हम सब जानते हैं कि आदमी जब अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है तो उस जिम्मेदारी के पूरे करने पर उसको प्रमोशन मिलता है, तनख्वाह भी बढ़िया मिलती है और इज्जत भी मिलती है। और आदमी जिम्मेदारी पूरी ना करे, एक आदमी डॉक्टर है, अब डॉक्टर होने के हैसियत से इसकी जिम्मेदारी है मरीजों को देखना और अच्छे से अच्छे तरीके से उनका इलाज करना। अब एक डॉक्टर यूं कहे कि नहीं, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई फूड एंड एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वंडरिंग अराउंड, ठीक है वक्त मिला तो मैं पेशेंट को देख लूंगा। अगर यूं कहे तो क्या होगा कि भाई इस डॉक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। और अगर एक डॉक्टर अपने खाने पीने को भी कुर्बान कर रहा है, अपने आराम और राहत को भी कुर्बान कर रहा है और पेशेंट्स को अच्छी तरह देख रहा है और उसके जरिए से अल्लाह पाक उनको शिफा दे रहे हैं, क्योंकि शिफा तो अल्लाह के हाथ में है ना। दुनिया दारुल असबाब है और इलाज कराना सुन्नत है, वरना शिफा कौन देता है भाई, अल्लाह। इसलिए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि बारी ताला बहुत तकलीफ है, कुछ इलाज मिला हो जाए। तो अल्लाह पाक उनको हुक्म कर रहे हैं कि फला दरख के पास जाकर उसके पत्ते खा लो। वहां पहुंचे, पत्ते खा लिए और अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। फिर कुछ दिनों के बाद तकलीफ शुरू हो गई तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई वो इस दरख के पास जाते हैं, पत्ते चबाते हैं, है ना। वो पत्ते चबाने के लिए गए तो तकलीफ बढ़ गई, कहा कि और दो चार खा लेता हूं। दो चार और खाए तो तकलीफ और बढ़ी। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो बड़ा रास अल्लाह से कलाम करते थे तो अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, बारी ताला पिछली मरतबा आपने मुझे कहा कि वो पत्ते चबा लो, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया, अब को जाकर मैंने अपने पत्ते चबाए, तकलीफ बढ़ गई और मैंने सोचा कि खा लूं और तकलीफ बढ़ गई। तो अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि मूसा, पहली मरतबा तुम्हें तकलीफ हुई थी तो रुजू मेरे तरफ हुआ था और मैंने वहां तुझे भेजा था और मैंने उसमें तेरे लिए शिफा रखी थी। अब इस मरतबा तुझे तकलीफ हुई तो मुझे छोड़कर बराए रास मखलूक के पास चला गया, मटेरियल के पास चला गया, मैंने तुझे उसके हवाले कर दिया। तो शिफा कौन देता है भाई, अल्लाह। लेकिन इलाज कराना सुन्नत है, इसलिए बीमार आदमी को क्या करना चाहिए, यूं फरमाया कि बीमार आदमी को सबसे पहले दो रकात सलातुल हाजत पढ़ना चाहिए और अपनी बीमारी की शिफा के लिए सदका करना चाहिए, ये अल्लाह के हुक्म है। और तीसरे नंबर पर चूंकि सुन्नत है इलाज कराना, और वो डॉक्टर के साहब के पास जावे और जाकर अपना इलाज तजवीज करे। तो मैं असल में ट्रैक से उतर गया, मैं अपने ट्रैक पर दोबारा आ जाता हूं कि वो डॉक्टर साहब जो है जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है, इनकी इज्जत भी बढ़ती है और उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं। और वो डॉक्टर साहब जो अपने चाय में खाने में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, मरीजों को देखा ना देखा ऐसे ही, तो फिर हमें कि वो हॉस्पिटल की नजर से उतर जाते हैं, इनको कोई प्रमोशन भी नहीं मिलता और हो सकता है कि उनको छुट्टी भी मिल जाए। है ना। तो इसी तरह मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गो, बहैसियत हम अल्लाह के बंदे होने के, हमारा काम है कि हम अल्लाह की बंदगी को सीखें और उस सीखे हुए तरीके पर हम अपनी अल्लाह की बंदगी को करें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस खत्मे नबुवत के सदके में हम अपनी तीसरी जिम्मेदारी ये ओढ़ें कि अल्लाह की बंदगी दुनिया में कैसे कायम हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीके दुनिया में कैसे जिंदा हो जाए, इसके लिए हम मेहनत और कोशिश करें। आप अंदाजा लगाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के अंदर में ईमान की मेहनत की और वो इस्लाम में दाखिल हुए। सबसे पहले मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस दिन उन्होंने कलमा पढ़ा उसी दिन इन तीनों जिम्मेदारियों को उन्होंने समझ लिया कि कलमे को सीखना, कलमे पर अमल करना और कलमा दूसरों तक पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फरमाया कि शाम तक 5 या 6 लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर आ रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह इनको कलमे की दावत दीजिए। यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम सहाबा इकराम न्यू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसलिए मेरे मोहतरम भाई रसूल को आज जो है ये जहरीले माहौल ने हमारे जहन को बिगाड़ दिया। मेरे पास बड़ी कोठी हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बढ़िया कपड़ा हो तो उसमें हम अपनी इज्जत को तलाश कर रहे हैं और ये इज्जत का तलाश करना हमारे लिए धोखा है। अगर इसमें इज्जत होती तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही जुब्बे में 12 साल की अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उस एक जुब्बे को दिन में पहनते थे और रात को आधा हिस्सा बिछाते थे और दूसरा आधे हिस्से को अपने ऊपर में ओढ़ लेते थे। कपड़ों में इज्जत होती तो अल्लाह पाक नबियों को कपड़े देते। मकान के एतबार से फरमाया कि इनका एक दीवार के साथ इनका सर लगता था और दूसरी दीवार के साथ इनके पैर लगते थे, इतना इनका मकान था। ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि आसमान मेरा छत है और जमीन मेरा फर्श है, और ऐसे इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। एक लोटा, एक एक बाउल, क्या कहते हैं उर्दू में, हाँ एक कटोरा है ना, इनके पास था। एक दिन सफर कर रहे थे तो एक आदमी को देखा कि वो चिल्लू के साथ जो है ना पानी पी रहे हैं, अपने हाथों के साथ यूं करके पानी पी रहे हैं। तो सोचा कि यार ये कटोरे की भी जरूरत नहीं, ये हाथ है ना, तो वो भी किसी को हदिया कर दिया। तो मटेरियल में हम अपनी इज्जत को और अपनी कामयाबी को तलाश करें, वी आर डिसीविंग आवर सेल्व्स, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। हमारी इज्जत और हमारी कामयाबी तो अल्लाह के अहकाम मानने में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में अपनी जिंदगी गुजारने में है और अल्लाह के अवामिर और नबी के तरीके दुनिया में जिंदा हो जाए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। अगर हमने इस जिम्मेदारी को पूरा कर लिया तो जैसे उस डॉक्टर को इज्जत मिल रही है, प्रमोशंस मिल रही है और तनख्वाह बढ़ रही है, इसी तरह अपनी जिम्मेदारी के पूरे करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो हमसे राजी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की किसी ताकत को हमारे ऊपर में हावी नहीं करेगा। हाँ, बल्कि फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अज्मईन व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मक्का मुकर्रमा टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा रोब इनका डाला था कि एक महीने की मुसाफिहत तक जो इंसान रहते थे इनके कुलूब इनसे खींचते थे और इनका रोब इनके दिलों के ऊपर में भरता था। हाँ, जहां भी जाते थे इनकी जिंदगी को देखकर सहाबा इकराम कोई तकरीरें नहीं करते थे, मेक अ लेक्चर फॉर 1 आवर एंड 2 आवर एंड एक्सप्लेन पीपल व्हाट इस्लाम इज, दैट वाज नॉट देयर आइडियोलॉजी। ये तो यूं कहते थे कि हमारे जैसे हो जाओ कामयाब हो जाओ, हमारे जैसे हो जाओ कामयाब हो जाओ। दे वर प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ एंड देयर प्रैक्टिकल लाइफ अट्रैक्टेड पीपल। इसलिए फरमाया एक मिसाल समझने के लिए कि जैसे मैग्नेटीज मैग्नेट जो है इसके अंदर में कशिश है लोहे को खींचने की, इसी तरह नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के मुबारक आमाल इसके अंदर में है दिलों को खींचने की। अब अंदाजा लगाएं, ख्वाजा मजदीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, बड़ा एहसान है हम पर, बगदाद के अंदर में दीन की खिदमत कर रहे हैं। और फरमाया कि एक मरतबा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हो रही है, ख्वाब में ज़ियारत हो रही है, और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम यूं फरमा रहे हैं जिसका मफहूम है कि मुइनुद्दीन यहीं पड़ा रहेगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लम, हुक्म कीजिए कहाँ जाना है। तो फरमाया कि अजमेर शरीफ का निशाना बताया नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हिंदुस्तान के मैप पर, नक्शे पर, और कहा कि यहां जाकर अपना पड़ाव डालो। तो फरमाया कि वो सफर कर रहे हैं और इनके उस सफर के अंदर में चूंकि अल्लाह के अवामिर और नबी के मुबारक तरीके इनकी जिंदगी में थे, चुनांचे इंसानों के कुलूब जो है ऐसे खींचे हुए इनकी तरफ आए कि इनके इस सफर के अंदर में 90 लाख इंसानों ने इस्लाम को कबूल किया। हाँ, कबूल किया। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्सियत जो 100% दीन को अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं और इसके जरिए से 90 लाख इंसानों को हिदायत मिल रही है, तो पूरी दुनिया के एतबार से कमोबेश 5 अरब होंगे इंसान, और उसमें सवाल या एक तो मुसलमान होंगे। वी आर जस्ट गेसिंग। तो अगर हर मुसलमान ये मुबारक जिंदगी ले आवे तो हर मुसलमान के जिम्मे 4 इंसानों को इस्लाम में दाखिल होना है, और पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर में दाखिल हो जाए और पूरी दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, हम सब आज इस बात का इरादा करें कि इंशाल्लाह आज से मैं अपनी दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए दीन को सीखूंगा, दीन पर अमल करूंगा, और दीन दुनिया में जिंदा हो जाए इसके लिए मैं मेहनत और कोशिश करूंगा। सब करते हैं इरादा भाई? हाँ। और इसके लिए बहुत आसान है ना, कि भाई हम ऐसी मजलिसों के अंदर में अपने आप को दाखिल करने की और बैठने की कोशिश करें जहां पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाकरे हो रहे हो। जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है हम पर कि ईमान वालों आपस में ईमान के मुजाकरे करो, इसलिए कि ये ईमान के मुजाकरे ईमान वालों को नफा देंगे। तो जब ऐसे मुजाकरों में हम बैठेंगे, अंदर में ईमान का लेवल बढ़ेगा, और ज्यों ज्यों ईमान का लेवल बढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए अल्लाह के अवामिर पर चलना आसान कर देंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना आसान कर देंगे। और ये बात जब पैदा होगी तो चैन, सुकून, राहत, इज्जत, ये सारे वादे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन ईमान वाले को अता फरमाने को कहा है। हाँ। अगर हम परेशान हैं तो हम खूब अपने आप को कहें कि यू आर इन प्रॉब्लम्स फॉर योर बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की इसलिए तू परेशान है, अपनी जिम्मेदारी पर आ जा, इज्जत मिल जाएगी। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिल रहे हैं। हाँ, इसी तरह हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होकर हमें इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि मोहतरम शौकत भाई हमारे यहाँ आए, इनके नसाया नसीहतें हमने सुन ली, अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता करे। तो मैं चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमको ये जो हमारे लिए आई ओपनर्स हैं, यानी आंखें खोलने वाली चीजें, और जो अकलमंद होते हैं वो हर चीज से सबक सीखते हैं। अब वक्त ये आ रहा है कि इंग्लैंड से शौकत भाई इंग्लैंड में रहते हैं और वहां से हम लोगों के पास जहां मुसलमानों की अक्सरियत है और ये उस मुल्क में रहते हैं जिसको हमने सुना है और उसको उसकी अक्सरियत के माहौल को भी जानते हैं, अब वहां पर जाकर अल्लाह की कुदरत को देखना है कि वहां पर रहकर अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कैसे रहते हैं। यही हुलिया आपको वहां मिलेगा, ये सिर्फ शौकत भाई को नहीं देखेंगे आपके इसी हुलिये में यहाँ आए हमारे सामने, बल्कि इसी हुलिये में सुन्नत के इसी तरीके में आप अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब अमेरिका में भी अफ्रीका में भी और इंग्लैंड में भी देखेंगे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और वो उस माहौल में रहकर एक एक छोटी छोटी सुन्नत का एहतिमाम करते हैं और हम यहां रहकर मगरिब की तकलीद में मजनून हो रहे हैं और वो वहां रहकर नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करने के लिए वो वहां बेताब बेचैन और उस माहौल में इसको दांतों से पकड़े हुए हैं और हम यहां पर रहकर उस मगरिब की तकलीद के लिए अपना सारा कुछ खो रहे हैं, अपने सारे दीनी असासे खो रहे हैं, अपनी सारी दीनी चीजें खो रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जदीद लगे और ज्यादा से ज्यादा हम मगरिब ज़दा लगे। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे और ये लोग जो हैं जो उसी माहौल में पले हैं गालिबन वही पैदा भी हुए होंगे, ये एक आदमी ऐसे नहीं है बल्कि ये हजारों आपको वहां ऐसे ही मिलेंगे जो दीन के हर हर सुन्नत को, बल्कि लंदन की मैं तो खुद गया नहीं हूं लेकिन दोस्तों और दूसरों से सुना हुआ है कि आप वो अमामा शरीफ तक को नहीं छोड़ते और ऐसे नहीं कि ये सब मौलाना है, ये सब सिर्फ मौलवी साहब मदरसे में पढ़ाने वाले या इमामत करने वाले नहीं, दुनिया के जितने भी शोबे हैं उन शोबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां मुसलमानों का अच्छा खासा ये रोल है, लेकिन अपने दीन को नहीं छोड़ने वाले, अपने दीन पर अमल करने वाले हैं, अपनी नबी की सुन्नत को दिल से लगाने वाले, और अब वहां से हमें नसीहत करने आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अब अरब दुनिया में भी लोग जाते हैं अमेरिका यूरोप से जमा लेकर, अब ये हमें देखना है कि अब हम लोग ये अपनी जो हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और अपनी की जो हम इस्लाम को के इस्लाम के असूलों और इस्लाम की पसंदीदा चीजों को जो हम नीची निगाह से देखते हैं, तो हमें इस पर सोचना चाहिए और किसी बगैर किसी खौफ या किसी झिझक के हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दिल से लगाना चाहिए ताकि पूरे दुनिया में फिर से इस्लाम का बहार नजर आए। अब इन लोगों को देखकर सिर्फ इन लोगों को देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं। अभी एक वाकया सुनाया कि उन्होंने नमाज पढ़ी उसको कोई वाज नहीं पड़ा तो वो अंग्रेज अमेरिका में मुसलमान हो गया, इन लोगों को देखकर मुसलमान हो रहे हैं और हम लोगों को देखकर इस्लाम से लोग दूर भाग रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भी इन्हें सोचना चाहिए कि इसलिए मैंने कहा ये हमारे लिए आई ओपनर है और अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और हमारी जिंदगी में 100% अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे जिंदगी में लाए और हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता करे। वाखर दावाना।